नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद ये बढ़कर 6.25% हो गया। गौरतलब है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को उधार देता है। 1 बेसिस पॉइंट 1% अंक का 100वां हिस्सा होता है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। G20 प्रेसिडेंसी पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। हम फाइनेंस ट्रैक में चर्चा में भाग लेंगे। सरकार ने फाइनेंस ट्रैक के लिए एक अलग से एजेंडा पहले ही निर्धारित। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई का खराब दौर पीछे छूट चुका है, लेकिन अभी इस मोर्चे पर ढिलाई बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को जल्दी ही होटल बुकिंग, पूंजी बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री जैसे विभिन्न लेन देन के लिए यूपीआई के जरिए राशि अपने खाते में ब्लॉक करने और भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यूपीआई में एक बार की राशि ब्लॉक करने और उसे अलग अलग कार्यों के लिए काटे जाने की सुविधा देने की घोषणा की। ग्राहक जब भी आवश्यक हो पैसा काटे जाने के लिए अपने बैंक खातों में धन राशि निर्धारित कर संबंधित इकाई के लिए भुगतान को तय कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार इस व्यवस्था से ई कॉमर्स और प्रतिभूतियों में निवेश के लिए भुगतान आसान होगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा, यूपीआई की क्षमता बढ़ाकर ग्राहकों को सेवाओं के एवज में भुगतान के लिए राशि अपने खाते में ब्लॉक करने की सुविधा देने का निर्णय किया गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा, यूपीआई की क्षमता बढ़ाकर ग्राहकों को सेवाओं के एवज में भुगतान के लिए राशि अपने खाते में ब्लॉक करने की सुविधा देने का निर्णय किया गया है। इससे ई कॉमर्स और प्रतिभूतियों में निवेश को लेकर भुगतान सुगम होगा। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के साथ उन उत्पादों की लिस्ट साझा की है जो रूस भारत से आयात करना चाहता है। एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। रूस ने वाहन, कलपुर्जा और कपड़ा सहित सैकड़ों ऐसे उत्पादों की सूची भारत को दी जो वह आयात करना चाहता है। अब वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों की ये सूची साझा की है। अधिकारी ने बताया कि रूस ने दवा, कपड़ा, वाहन, कलपुर्जा और रसायन सहित विविध क्षेत्रों से सैकड़ों वस्तुओं की एक सूची साझा की है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अधिकारी ने कहा कि रूस इन उत्पादों का भारत से आयात करना चाहता है। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि निवेशकों से गैरकानूनी ढंग से पैसे जुटाने वाली इन्फिनिटी, रियलकॉन और सुमगल इंडस्ट्रीज समेत 4 कंपनियों की कुल 25 संपत्तियों की 10 जनवरी को नीलामी की जाएगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि गैर कानूनी ढंग से जुटाई गई राशि की वसूली के लिए अगले महीने की 10 तारीख को इन कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। इन कंपनियों में GSHP रियलटेक लिमिटेड और इन्फोकेयर इंफ्रा लिमिटेड भी शामिल है। सेबी ने कहा कि 4 कंपनियों की कुल 25 संपत्तियों को नीलामी के जरिए बेचकर पैसे वसूले जाएंगे। इनका सम्मिलित रूप से आरक्षित मूल्य कुल 12.2 करोड़ रुपए का है। सर्वाधिक 16 संपत्तियां इन्फिनिटी रियलकॉन की हैं, जबकि सुमगल की 5 और GSHP एवं इन्फोकेयर की 2-2 संपत्तियों की नीलामी होगी। नियामक ने इन संपत्तियों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि संभावित बोलीकर्ता अपने स्तर पर संपत्तियों के स्वामित्व की पड़ताल कर ले। तेल शोधन एवं विपणन कंपनी BPCL के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार सिंह को बुधवार को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। ये पहला मौका है जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को किसी महारत्न PSU का प्रमुख नियुक्त किया गया। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण कुमार सिंह को 3 वर्ष के लिए ONGC का चेयरमैन नियुक्त करने के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिंह BPCL के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं। ONGC के प्रमुख के तौर पर सिंह की नियुक्ति के बारे में खबर PTI भाषा ने 17 नवंबर को ही दी थी। वह BPCL के प्रमुख के पद से अक्टूबर 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। ONGC के नियमित चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पद अप्रैल 2021 से ही रिक्त था। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी ऑडी अगले महीने से अपने भारतीय मॉडलों के दाम 1.7% तक बढ़ाएगी। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि उत्पादन लागत और परिचालन खर्च में वृद्धि के चलते वाहनों की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लन ने बयान में कहा, कंपनी की व्यावसायिक रणनीति मॉडल लाभ और स्थिरता बनाए रखने पर टिकी है। उत्पादन और परिचालन लागत बढ़ने के कारण कीमत में वृद्धि की गई है। कंपनी के मॉडल के लिए नई मूल्य सीमा कंपनी की बाजार में स्थिति बनाए रखने के साथ साथ डीलर भागीदारों दोनों के सतत विकास को सुनिश्चित करती है। इससे पहले कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स ने भी अगले महीने से वाहनों की कीमतें बढ़ाने की योजना की घोषणा की। वैश्विक मांग में कमजोरी के बीच नवंबर में चीन के आयात और निर्यात में गिरावट आई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोविड-19 पर अंकुश लगाने के उपायों से भी प्रभावित हुई। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में चीन का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 9% घटकर $296 अरब रह गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।